जनरल साहब इजाजत दें।
मैं तुम्हारे इस ना तजुर्बेकार मंसूबे की खातिर F-14 को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकता।
लेकिन हवाई रिफ्यूलिंग के सारे इक्विपमेंट्स हमारे गोदाम में मौजूद हैं। ये सभी हवादिस और नुकसान अमरीकी माहरीन की दी हुई अधूरी ट्रेनिंग का नतीजा है। हमें खुद इसका हल निकालना होगा, कोई और रास्ता नहीं है।
इस मंसूबे के लिए F-14 का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। अगर कोई नया मंसूबा हो तो बताना।
अगर मुझ पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा किया होता और थोड़ा सा ज्यादा साथ दिया होता तो हमें इजाजत मिल गई होती।
क्या नहीं सुना उन्होंने? क्या कहा? इराक के अंदर घुसने के लिए दूसरे फाइटर जेट्स और F-14 सिर्फ बैकअप
के लिए? क्या ये मुमकिन है कि इतने एडवांस जहाज का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मुझे मौका तक नहीं दिया गया कि पूरा मंसूबा बनाकर उन्हें पेश कर सकूं। ये हवा में रिफ्यूलिंग भी कर सकता है और एक बॉम्बर का काम भी कर सकता है।
मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा। हवाई रिफिलिंग को अंजाम दे दो।
बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। इसमें जिगर है।
कल रात उन्होंने रेडियो पर ऐलान कर दिया है कि हम F-14 की हवाई रिफिलिंग करने वाले हैं। वो हमारी एक गलती के इंतजार में हैं ताकि शोर शराबा शुरू कर सकें। नामर्द हैं ये लोग।
सही है, वो इसी इंतजार में है कि हम एक छोटी सी गलती करें और उसी बहाने F-14 हमारे यहाँ से ले लें।
अब्बास, नहीं हुआ तो क्या? हमारे हाथ में 2 घंटों से कम वक्त बचा है।
उस सूरत में बंद इंजन से लैंडिंग करेंगे।
बंद इंजन में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने अपनी जान दांव पर लगा दी है, हो जाएगा।
कर्नल सुल्तानी ने भी कहा है कि अगर हो गया तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है।
इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में कर्नल साहब को अच्छी खबर सुनाएंगे। फिलहाल हमारे दोस्तों को भी हमारी बातों का यकीन नहीं है।
इंजीनियर साहब, प्लीज बाई तरफ की बास्केट खोलें।
लेफ्ट साइड बास्केट ओपन। ओकाप, दिस इज एयर फोर्स लेफ्ट ऑब्जर्वर। एयर फोर्स लेफ्ट ऑब्जर्वर, ओवर। ओकाप, हम पोजीशन पर हैं, रिफ्यूलिंग के लिए तैयार। बास्केट खोल दी है।
सिस्टम तैयार है, हम हाजिर हैं।
कॉन्टैक्ट के लिए आ रहा हूँ।
Nice connection. Distance 40. Distance 30.
Distance 20.
Sir, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते।
डिस्टेंस 5,
डिस्टेंस 3, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे, मिस द बास्केट, उकाब,
थोड़ा पीछे जाकर कांटेक्ट के लिए दोबारा आगे आइए,
कॉपी सर।
नाइस कनेक्शन सर, डिस्टेंस 20,
स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा एल्टीट्यूड कम करो, थोड़ा और कम करो, मिस द बास्केट,
स्पीड अंडर कंट्रोल, आवर एटीट्यूड कांस्टेंट।
इंशाल्लाह खुदा से उम्मीद है कि नजदीक आते वक्त हमारी स्पीड कम करेंगे ताकि इस बार कांटेक्ट हो जाए।
नाइस अप्रोच,
डिस्टेंस 3,
बढ़ाओ एल्टीट्यूड, बढ़ाओ ऊपर और ऊपर, कांटेक्ट कांटेक्ट, नाइस कांटेक्ट,
वेरी नाइस सर।
रिफ्यूलिंग के लिए तैयार।
इंजीनियर साहब पेट्रोल दीजिए प्लीज।
ओके, रिसीविंग फ्यूल नाउ।
ओका, पेट्रोल आ रहा है।
पॉजिटिव।
ओके 1000।
ओका, यू हैव रिसीव्ड 1000 फ्यूल।
ओके, 1000 पाउंड मिला है।
2000।
2000 पाउंड पेट्रोल मिला सर।
बहुत अच्छे, इसी पोजीशन पर बने रहें। थोड़ा सा नीचे जाएं प्लीज, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए।
3000 पाउंड्स।
3000 पाउंड्स पेट्रोल मिल गया। आपको 4000 पाउंड्स पेट्रोल मिल गया है, डिस्कनेक्ट के लिए तैयार हो जाएं। यस सर, 4000 पाउंड पेट्रोल मिल गया, डिस्कनेक्ट के लिए तैयार।
डिस्कनेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, स्टैंड बाय पर रहें।
यस सर।
इंजीनियर साहब पेट्रोल बंद करें प्लीज, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।
फ्यूल डिस्कनेक्टेड।
ओके, क्लियर टू डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट 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 हो गया है।
डिस्कनेक्ट,
बहुत अच्छी।
अब्बास मुबारक हो।
हम सभी को मुबारक हो अली।
वेरी नाइस सर।
शुक्र है खुदा तेरा शुक्र। मिशन कंप्लीटेड, सबको मुबारक हो, बहुत अच्छा रहा। आप सबका शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। हम लौट रहे हैं, गुड लक।
ऐसे मर जाएगा मेरा बच्चा, ना सोता है ना ही कुछ खाता पीता है। एक चीनी कहावत है, कहते हैं जो आदमी सिर्फ खाना खाता है और कोई भी काम नहीं करता तो आहिस्ते आहिस्ते मर जाता है।
ऐसी बात मत करो, खुदा ना करे। खुदाया तू ही कुछ कर अब तो।
क्यों बंद कर दिया, कितना अच्छा था, मैं सुन रहा था।
मैं खबरें सुन रहा था, खत्म हो गई।
क्या खबर है?
जहाज की हवा में रिफिलिंग के बारे में खबर थी। अब्बास ने वो काम किया।
अब क्यों नीचे जमीन पर आकर पेट्रोल नहीं भरते, वहां ऊपर क्यों गए? ऐसे काम का क्या मतलब?
जंग है बाबा जान, एक एक मिनट अहम है।
लेकिन पेट्रोल और नहीं पता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। खुदा उसे लंबी उम्र दे और हम सब की आखेबत बखैर करे। मेरी जान, वो रेडियो जरा यहाँ ले आओ, सुनना नहीं है तो मुझे दे दो, दे दो।
मेरा मेहराबाद एयरबेस पर ट्रांसफर हो गया है। इस वाहन एयरबेस के कमांडर की पोस्ट के लिए तुम्हें पेश करना चाहते हैं।
बड़ी दिलचस्प पेशकश है। एक लेफ्टिनेंट का कमांडर बनना कुछ अजीब सा नहीं कर्नल साहब?
कमांडर इन चीफ के हुक्म के मुताबिक तुम सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे से कमांडर बनोगे।
आपका और उनका शुक्रिया। इंशाल्लाह इस लायक बन सकूं, लेकिन अगर मेरे दिल की राय और झुकाव की कोई अहमियत हो तो मुझे कमांडर का ओहदा कबूल करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है।
अगर मुल्क की खिदमत करना ज्यादा अहम है तो इस ओहदे को कबूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है अब्बास।
अगर जसारत ना हो तो इस ओहदे को कबूल करने के लिए मेरी दो शर्तें हैं।
फौज में अपने से ऊपर वालों का हुक्म मानने के लिए कोई शर्त नहीं रखता।
अगर जसारत ना हो कर्नल साहब।
ठीक है, बोलो।
एक ये कि कमांडर का ओहदा मेरे परवाज करने में रुकावट न बने।
और दूसरी?
खोजा सेफर और आबदी मेरी जमानत पर परवाज कर सके।
बहुत बड़ी जमानत है अब्बास, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारे रिकॉर्ड पर धब्बा लग सकता है।
बहरहाल ऐसे हालात में जिस किसी के दिल में भी इस मुल्क के लिए दर्द है उन्हें जैसे भी हो खदमत करने का मौका देना चाहिए। खुजा सेफर और आबदी इस मुल्क के पैसों से गए पढ़ाई की ट्रेनिंग की, ताकि ऐसे मौकों पर जब जरूरत पड़े तो मुल्क की खिदमत कर सकें।
तुम्हें आबदी के केस के बारे में पता है? तुम्हारी बेहतरी में नहीं है कि किसी ऐसे की जमानत करो जिसका हाथ शहीद नुज़े बेस की बगावत में था।
आबदी एक नेक इंसान है कर्नल साहब, मैंने उसके बारे में तहकीक की। कुछ हद तक उसकी बीवी के वालिद का हाथ उस माजरे के पीछे था। अभी वो जेल में है। आबदी को किसी और के गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जंग है।
अगर वो जहाज को जमीन से टेक ऑफ करके चले गए और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा तो क्या?
मुझे गिरफ्तार करना।
दस्तखत करोगे?
जी दस्तखत करूंगा। मैं अलर्ट पर हूं जसारतन, अगर कोई काम नहीं तो जा सकता हूं, इजाजत दे। शुक्रिया।
मेरा दिल खुश है कि एक लड़का बड़ा किया है। लड़का बड़ा किया है ताकि अपने मुल्क के दर्द के लिए मरहम का काम करे, लेकिन ये हम सबके जख्म का नमक बन गया है। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो बचपन से ही तुम्हें अपने हाथ के नीचे काम पर रख लेता। कम से कम लोगों के सामने इतनी जिल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ता हमें। ए, 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 ए। दिन ब दिन अब्बास का प्रमोशन हुआ जा रहा है और दूसरी तरफ मेरा बेटा एक फिरंगी से शादी करके आया है, जिसकी वजह से उसे फौज से निकाल दिया गया। क्या इतनी कीमती है? इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ भी कहता हूँ तुम उल्टा ही लेते हो।
आप उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहते?
मैं उसे छोड़ दूँ? अपनी आबरू को भूल जाऊँ? देखो सईद, इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का हौसला नहीं है। देखो, अगर एक हफ्ते में उन्होंने तुम्हें जहाज में बैठने की इजाज़त दे दी तो ठीक है, वरना सईद, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें मस्जिद में ले जाऊंगा और तुम्हारा नाम लिखा दूंगा। सरहद पर जाओ और वहां लड़ो, शायद उसे हमारी कुछ आबरू बच जाए। अफसोस, ये जवान यहाँ पर बिस्किट बना रहा है। अजीब मुसीबत है बाबा।
भागो भागो जल्दी अंदर जाओ भागो भागो जल्दी अंदर जाओ जल्दी अंदर जाओ
जल्दी जाओ जल्दी जाओ
जल्दी करो भागो भागो जल्दी करो भागो 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 अंदर जाओ भागो
अरे अंदर जाओ
चलो भागो 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 अंदर जाओ जल्दी करो जल्दी करो
चलो अंदर जाओ
जाओ
आप पीछे आप पीछे चलो
हेलो
हेलो सलाम सईद
सलाम
अब्बास बोल रहा हूँ सही सही सईद रुको रुको ये ऊपर वाली मंजिल से बात करूँ
ये लो
हेलो सलाम अलैकुम सईद चाचू
वालेकुम सलाम मेरी जान तुम पर कुर्बान जाऊँ
पापा कह रहे हैं अपना F-14 संभालो
सुना
क्या संभालो यानी क्या अब्बास
सलमा का क्या मतलब था
वही जो सलमा कह रही है
तो यानी
मुबारक हो इंशाल्लाह
जल्दी आओ खुदा हाफिज
कस के पकड़ो
कंग्रेचुलेशंस हनी
तुम्हें कहां से पता चला
तुम्हारी हैप्पी वॉइस से
बात तो सही है मेरी खुशहाल आवाज से
मैंने खुद को फांसी के फंदे के लिए तैयार कर लिया था कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन दरवाजे के बाहर आऊंगा प्रवास करना तो दूर की बात
सबसे पहले काम ये करो कि अपने गांव उर्मिये जाकर अपने घर वालों से मिलाओ
मेरा दिल चाहता उससे पहले प्रवास करूं
उसी के लिए तो बाहर आए हो मेरे भाई अपने घर वालों को मिलकर इस्फहान आ जाना इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक बड़े ऑपरेशन में शिरकत करेंगे
अगर इजाजत हो तो ऑपरेशन के बाद जाकर उन्हें मिलाऊंगा
तुम्हारे घर वालों ने बहुत वक्त से तुम्हें देखा नहीं है
मैं डर रहा हूँ कि अगर उन्हें मिलूंगा तो प्रवास करने का दिल नहीं करेगा
तुमने सही जवाब नहीं दिया
रखो।
आजाद, आपसे गुजारिश है, बैठ जाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ستاروں سے بھرے آسمان اور پھولوں سے لہراتی سرزمینیں، ایران کے دلیرو، آپ کو سلام، خصوصی محبت اور احترام، اے الہی فوج کے تیز پرواز کرنے والے کمانڈروں، کل چند کمانڈروں کے ساتھ ہوئے جلسے میں فوج کے محترم کمانڈر ان چیف کے حکم کے مطابق اس ناچیز بندے کو اصفہان کے 8th ایئر بیس کے کمانڈر کے پوسٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں نے خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عظیم اور بہت ہی اہم ذمہ داری کو اپنے دین اور ملک کی خدمت سمجھ کر قبول کر لیا. آپ سب میں سے ہر ایک کی خدمات کے متعلق میری عقیدت کو نظر میں رکھتے ہوئے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے درمیان ایسے تجربے کار اور بزرگ ساتھی موجود ہیں جس میں سے ہر ایک مجھ جیسے ناچیز بندے سے بہتر، قابل تر اور زیادہ منظم ہیں. لیکن ایک فریضہ تھا جسے فرار کرنا ممکن نہیں تھا نہ ہے. لسان الغیب حافظ شیرازی کے بقول، آسمان امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا تو اسے کورا اندازی کے ذریعے میرے نام کر دیا. اب میں یہاں ہوں اور میرے یہ کمزور اور ناتواں ہاتھ آپ کی محبت اور توانائی سے بھرے ہاتھ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تاکہ ہم ایک ہو جائیں اور اس عظیم ملک کے خبیث دشمن کو ایک محکم مکہ مار کر ان کے اصلی مقام تک پہنچا دیں اور دنیا کے سامنے انہیں ذلیل اور رسوا کریں انشاءاللہ. اگر آپ کے درمیان ایسے محترم افراد ہیں جو اس ناچیز بندے کے ماتحت رہنے کو اپنی شان اور بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں، تو انہیں اختیار ہے کہ کسی دوسری جگہ یا بیس پر جہاں مصلحت سمجھیں ملک کی خدمت جاری رکھ سکتے ہیں، اور جو رہ جائیں وہ اس ناچیز کو اپنی آغوش میں قبول کریں تاکہ اس مقام اور اس جگہ پر ایران اور اسلام کے خدمت گزر رہیں.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين. يا
آئیے اس طرف سے آئیے. بہت بہت خوش آمدید کرمی صاحب، ایک پھول اس گلستان میں لے آئے میرے بھائی.
اس میں اتنا مزہ نہیں آیا رؤوفزادے صاحب، آپ کو کچھ اور کہنا چاہیے تھا.
اتفاق سے اس میں بہت مزہ ہے، آپ خود ماشاء اللہ ہزار بار ماشاء اللہ کوئی پھول سے کم نہیں. آپ نے میرے دوست عباس بابائی کا نام لیا ہے جو سب سے بہترین پھول ہے، اس کے مقابلے ان پھولوں کا نہ تو رنگ ہے نہ ہی خوشبو میرے بھائی.
آپ چلیے،
آئیے آئیے یہاں آئیے. तारामी साहब, क्या आप बताना नहीं चाहते मेरा नंबर आपको किसने दिया? हाँ,
अगर आप इजाजत दें तो पहले बात मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जरूर बताऊंगा। शुरू करें।
जरूर, लेकिन पहले एक चीज आपको बता दूं। हाँ, खुदा करे कल आप ये मैगजीन और ये सीडी वीडी जब निकालेंगे तो याद रहे उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम डाला तो फिर देख लेना। हाँ। देखे कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में लिख दें, हम शुक्रगुजार हैं जनाब बे रे का बहादुर रऊफजादे के बदले। हाँ, ऐसा नहीं करना।
जरूर, आप फिक्र ना करें बहादुर साहब।
मैं समझा नहीं, ये क्या है? अरे मेरे भाई, मैंने आपसे कहा मेरा नाम नहीं लिखना और आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बातें ज्यादा हैं और मेरा हाफिजा भी कवी नहीं है, मुझे डर है कहीं कोई बात भूल ना जाऊं। जब मैं इसे लिख लूंगा तो इसे डिलीट कर दूंगा, आप फिक्र ना करें।
वादा?
वादा।
चलिए उस मेहरबान खुदा के नाम से शुरू करता हूँ और उसके महबूब बंदे की याद में।
एक नाजनीन फूल और उसकी तरह मेहरबान
शहीद अब्बास बाबाई। करामी साहब, मैं चाहता हूँ कि अपनी बात का आखिरी हिस्सा पहले कहूँ, उसके बाद का पहला हिस्सा बीच में कहूँ और बीच वाला आखिर में कहूँ। कुछ अलग तरीके से बयां करना चाहता हूँ, अब आप लोग उसे क्या कहते हैं? कुछ हटके होना चाहिए, कोई एतराज तो नहीं?
नहीं, इत्तफाक से बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप अपनी बात बयान करना चाहते हैं, सफरनामा और जिंदगी नामा लिखने में ये तरीका बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जैसा चाहे वैसे कहें।
ये हुई ना बात, वो दो औरतें देख रहे हैं जो वहाँ खड़ी हैं।
सादिक भाई, जरा इसे वहाँ रख दो।
उसमें से एक मेरी बीवी है, ये आपको बता दूं, वो मेरा सब कुछ है। और दूसरी मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने वाली है। मेरे दो और बच्चे भी हैं, सबसे बड़ी बेटी जिसकी शादी हो गई है इस्पान में है, जिसके तीन बच्चे हैं। और दूसरे नंबर पे मेरा बेटा है जो खुद हजारों में एक है, वो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है। इन्हें यहाँ पर छोड़िए ताकि हम दूसरों की तरफ चलें। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बाप एक बहुत ही बदमाश इंसान था, खुदा मगफिरत करे, कोई ऐसा काम नहीं जो उसने छोड़ा हो। चाकू चलाना, शराब पीना, ऐसी सारी चीजें, और आखिर में उसकी जान भी ऐसे ही काम में चली गई। उसके बाद बचा मैं और मेरी माँ और एक छोटी बहन। क्या करें क्या ना करें, मैंने सोचा कोई धंधा शुरू करें और मैं पहुंच गया जुए के अड्डे पर। मेरे मामू, खुदा उनकी मगफिरत करे, एयरफोर्स में एक शरीफ अफसर थे, मुझे वहां से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एयरफोर्स में भर्ती करा दिया।
मैं हवलदार बन गया।
उसके अलावा एयरबेस में बागबानी करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। अब जैसे ही 2000 मेरी जेब में जमा हो जाते, सारे लफंगे मेरे आसपास भिनभिनाने लगते, वही बदमाश लड़के जो मुझे जुए के अड्डे पर ले गए थे। मैंने अपने बाप का नाम रोशन किया था, कोई काम नहीं जो नहीं किया। खुलासा, मेरे मामू इस फिक्र में थे कि किस तरह मुझे इंसान बनाया जाए, मेरी शादी करवा दी। उसके बाद भी मैं इंसान नहीं बना।
यहाँ तक कि उस बेचारी औरत को दो बच्चे भी हो गए।
एक रात बहुत ज्यादा पीकर टाइट होकर जब मैं घर लौटा, जो भी हाथ में आया सब तोड़ फोड़ दिया मैंने। उसके बाद अपनी बीवी से कहा, निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ अपने बाप के घर, जाओ जहन्नम में जाओ।
बेचारी औरत
दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़कर खुदा के भरोसे चली गई। ऐ खुदा, ऐ खुदा, थक तो नहीं गए?
नहीं नहीं, इत्तेफाक से बहुत दिलचस्प है, बताइए।
अभी खत्म करता हूँ साहब। एक दिन ये तय पाया था कि मुझे गाड़ी में पौधे और गुलदान भर के एयरबेस में ले जाने थे। मैं अपनी गाड़ी चलाते चलाते जा रहा था कि अचानक दिखा के फिर से वही लफंगे लड़के सामने नजर आ गए। चलो आओ, नहीं मुझे जाना है, अरे चलो यार, करते करते चला गया और बैठ गया, और शराब और कबाब और प्याज और जो कुछ भी आया सब खाया पिया, पी पी कर टाइट, बिल्कुल टाइट। कुछ घंटे गुजरने के बाद याद आया ये पौधे तो एयरबेस ले जाने थे, एकदम से खड़े होने गया लेकिन पैर साथ दे तो। अब जैसे तैसे करके गाड़ी तक पहुंचे, उसमें बैठे और सेल्फ मारकर निकल पड़े। किसी भी हाल में पहुंचना था, फुल स्पीड में चल पड़े एयरबेस की तरफ। वैसा ही जैसा फिल्मों में होता है। चुप रहो। अरे चुप रहो ना बहादुर, ये क्या कर रहे हो? अगर कोई हमें इस हाल में देख लेगा तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है।
कुछ नहीं होगा।
क्या तुम दो चार पैक कम नहीं पी सकते थे?
इसलिए किस किस्मत करो बाबा, ये बिल पहुंचने का कोई खोना ढूंढ लूंगा, एक दो घंटे आराम कर लूंगा तो बिल्कुल फिट हो जाऊंगा।
हमारा नसीब अच्छा होगा तो हम दोनों को चेक पॉइंट पर कोई रोकेगा नहीं।
वो सब मेरे दोस्त है, थोड़ी सी सलाम दुआ कर लेंगे ना तो आगे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके अलावा हमारी गाड़ी में माल भरा रखेंगे तो खुद ही कहेंगे आइए खुशामदीद।
बहादुर
खुशामदीद,
चेक पॉइंट बहादुर, सीधे बैठो। बहादुर खुदा हम पर रहम करे। बहादुर सीधे बैठो। पंचर हो गया, अब मर गए।
पंचर हो गया तो टायर को बदल दो, खड़े क्यों?
चलो उतरो उतरो
उतरो। क्या कर रहे हो? हाँ जी
बैठो इधर, बैठो शोर मत मचाओ, यहीं बैठे रहो, मैं अभी टायर बदल कर आता हूँ। क्या मुसीबत है? तुम क्या कर रहे हो? मुसीबत में डाल दोगे, अपने काम पर ध्यान दो। मर गए, उठो हम मर गए। चलो एयरबेस के कमांडर आ रहे हैं, चलो कहीं छिपे। अरे टायर बाद में बदल लेंगे।
एयरबेस का कमांडर यहाँ का
सलाम अलैकुम रऊफ जादे साहब।
सलाम कुमार साहब, सलाम अलैकुम।
सलाम।
पंचर हो गया टायर, अभी इसे बदल दूंगा। वो फूल जो कलन सुल्तानी ने मंगाए थे उसे लाया हूँ, फूल आया हूँ, अभी इसे बदल देता हूँ, अभी हो जाएगा।
सही, जाकर जरा उसे बदल दो।
उठो मैं बदल देता हूँ।
नहीं सहमत होगी, माफ करना।
पहले इसे तो निकालो।
हुँ। अब तो रास्ते लग गए।
उस रात सुबह तक सो नहीं पाया, लेकिन इस डर से नहीं कि डांट पड़ेगी या सजा होगी या काम से निकाल देंगे। मैंने तो उन चीजों के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि मुसलमान होने के बावजूद कर्नल साहब ने क्यों मुझे कुछ भी नहीं कहा। शायद मेरे दिल की गहराई में डर था, या शायद मैं सोच रहा था कि ये तूफान आने से पहले वाली खामोशी थी। अगले दिन सुबह सुबह ही उनके दफ्तर चला गया था। ये थी मेरी दास्तान जो आपको बता दी सार्जेंट साहब।
मैं अगर कर्नल साहब की जगह होता तो मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करता, लेकिन हकीकत में उन्होंने रहमदिली दिखाई। ये बताओ तुम्हें कहा क्या?
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उनके कुछ नहीं कहने ने ही मुझे दीवाना बना दिया है। कल रात से लेकर अब तक एक मिनट नहीं सोया हूँ।
तो फिक्र किस बात की? ऐसा समझो उन्हें पता ही नहीं चला तुमने क्या किया।
सार्जन साहब माफ करना, आप मुझे माफ करना। ये सही है कि बेवकूफ हूँ, लेकिन बच्चा नहीं हूँ।
तो फिर ऐसा समझो कि समझ गए, लेकिन तुमसे कुछ नहीं कहा। हाँ,
मुझे ये पता करना है वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने ही मुझे काम पर रखा था, उससे जरूरी ये है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। समझे आप?
मुमकिन नहीं है भाई, उन्हें बहुत काम है। जाओ मेरे भाई, जाकर अपना काम करो।
आप पर कुर्बान जाऊं, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। कुछ ऐसा कर दीजिए कि दो मिनट के लिए मैं कर्नल साहब के कमरे में जा सकूं। मैं गुजारिश करता हूं, ये कर दीजिए मेरे लिए।
बहुत अच्छे, बैठो बैठो, देखने दो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं।
खुदा लंबी उम्र दे।